तारीख 16 जनवरी दिन गुरुवार, कार्यक्रम दिनभर के साथ मैं हूं मानसी दास। केरल में राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से नाराज राज्यपाल, कहा
आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड आई कम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर्स दैट द गवर्नमेंट हैज चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी।
केंद्र सरकार का ऐलान, कश्मीर दौरे पर जाएंगे 36 केंद्रीय मंत्री।
अगर वो अभी सोच रहे हैं कि इसको अब वापस करें तो फिर भी मैं कहूंगी चलो कुछ होश तो आया, पर वो ये नहीं कह रहे।
बीबीसी के खजाने से होगी खास पेशकश।
स्कूल का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है।
कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि बैठे रहते हैं, बुक निकालो खुद पढ़ो, खुद बता देंगे, खुद ही ढूंढो, खुद ही करो।
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। केरल विधानसभा के एक प्रस्ताव पारित कर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही केरल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। लेकिन राज्य के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने इस पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी थी। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और मुझे अखबारों से पता चलता है कि नागरिकता कानून की संवैधानिकता को लेकर राज्य सुप्रीम कोर्ट के पास गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक दल शनिवार से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, जहां वे घाटी में संवेदनशील इलाकों सहित विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और वहां जाकर वो संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद वहां के प्रभाव के बारे में लोगों से बात करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर से पहले की तुलना में उनका देश अब अधिक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। बीती गर्मियों से ही ईरान यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर लगी पाबंदियों से धीरे धीरे हटने लगा है, जो उसने परमाणु समझौते के तहत किए थे। ये परमाणु समझौता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। अब इस महीने की शुरुआत में ही ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन से संबंधित किसी भी प्रतिबंध को लेकर बाध्य नहीं है। ईरान की ये प्रतिक्रिया अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एकतरफा परमाणु करार तोड़ने के फैसले की घोषणा के बाद आया है। उधर मंगलवार को इस समझौते के यूरोपीय हस्ताक्षरकर्ताओं ने ईरान के हालिया उल्लंघन पर औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। जर्मनी की सरकार ने अपने राज्य प्रशासन के साथ एक समझौता किया है। ये समझौता साल 2038 तक कोयले पर पूरी तरह निर्भरता खत्म करने को लेकर है। इस समझौते के तहत जो खनन, लिग्नाइट या कोयला पर पूरी तरह निर्भर है, उन्हें उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए $40 अरब से अधिक की मदद दी जाएगी। जर्मनी के आर्थिक और ऊर्जा मामलों के मंत्री पीटर अल्टमायर ने अपने एक ट्वीट मैसेज में बताया कि ये विधेयक इस महीने की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। जर्मनी के आर्थिक और ऊर्जा मामलों के मंत्री पीटर अल्टमायर ने कहा, हमने पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बढ़िया समझौता तैयार किया है। ये बताता है कि हम कोयले के इस्तेमाल को खत्म करने के आयोग के सुझाव के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जर्मनी की सरकार जल्द से जल्द ये विधेयक पेश करेगी। हम 29 जनवरी को ये विधेयक ला सकते हैं। हम क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलाव के लिए सुझाव पर काम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2038 तक जर्मनी को पूरी तरह कोयले से चलने वाले बिजली घरों से मुक्त कर लेंगे। साल 2020 के दशक के अंत में हम ये समीक्षा करेंगे कि क्या हम लक्ष्य को और पहले हासिल कर सकते हैं या नहीं। ये थे जर्मनी के आर्थिक और ऊर्जा मामलों के मंत्री। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग को दशक की सबसे भयानक आग बताया जा रहा है, लेकिन इस आग में दुनिया के सबसे पुराने प्रागैतिहासिक युग के एक पेड़ की प्रजाति बच गई है। जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक वॉल्मी पाइन्स, जिसे कि डायनासोर युग के पेड़ के रूप में भी जाना जाता है, वो इस आग में बच गया है। ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी है और कई जंगल नष्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इस जाति के कम से कम 200 पेड़ सुरक्षित हैं। आग के अलावा ऑस्ट्रेलिया सूखे के प्रकोप को भी झेल रहा है, लेकिन इस बीच वहां कुछ जगहों पर तेज़ बारिश के भी आसार हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के एक शख्स ने इसे देखते हुए ये प्रतिक्रिया दी है।
Yeehaw! Oh yeah!
इस शख्स की खुशी का अंदाज़ा हम इस आवाज़ से ही लगा सकते हैं। इसके अलावा चीन से भी एक खबर है। चीन के ताइवान की एक बार फिर राष्ट्रपति चुनी गई साई इंग वेन के बयानों पर उन्होंने नाराज़गी जताई है। 63 साल की वेन ने BBC को दिए एक ख़ास इंटरव्यू में कहा था कि हमें खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित करने की ज़रूरत नहीं है। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन भर कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। केरल की पिनराई विजयन सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन इससे राज्य के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान नाराज हैं। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा।
आई एम द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड आई कम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर्स दैट द गवर्नमेंट हैज चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी।
केरल के गवर्नर का कहना है कि मैं राज्य का संवैधानिक प्रमुख हूं और मुझे अखबारों से पता चलता है कि नागरिकता कानून की संवैधानिकता को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि सभी लोग कानून और संविधान का पालन करें। इधर केरल सरकार का कहना है कि ये कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस मुद्दे को समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की नालसार लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा से और उनसे यही पूछा कि क्या राज्य सरकार का ऐसा करना उनके द्वारा गवर्नर की अवहेलना करना जैसा है।
ये जो गवर्नर साहब ने बात कही कि मुझे बताया जाना चाहिए था, इसमें जरा सा ये है कि गवर्नर को अनुच्छेद 167 के तहत ये अधिकार है कि उनको चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बताएं कि क्या डिसीजन हुए कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और क्या ऐसे प्रपोजल हैं जिन पे स्टेट असेंबली लॉ बनाने वाली है। तो इस केस में लॉ बनाने का तो प्रपोजल कोई है नहीं, क्योंकि केरल असेंबली को अधिकार ही नहीं है इस पर लॉ बनाने का। और क्या एक केस फाइल करना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट है, इसमें संविधानविदों में ओपिनियन जो है वो दो ओपिनियन हो सकते हैं, कुछ कहेंगे को है कुछ कहेंगे नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक कोर्ट में जा रहे हैं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है। देखिए मेन बात जो है वो गवर्नर साहब ने भी खुद कहा है कि वो लीगैलिटी पे नहीं है बल्कि प्रोप्राइटी पे हैं। आम तौर से चीफ मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो गवर्नर को वेल इन्फॉर्म्ड रखे, लेकिन अक्सर चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। और क्योंकि गवर्नर्स पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, एक तरह से सेंटर जो है वो पिक करके, हैंड पिक करके गवर्नर्स को भेजता है, जो गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के सिस्टम में गवर्नर्स को बिल्कुल सेंटर का एजेंट बना लिया, ये उसमें एक मैं समझता हूँ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है।
लेकिन सर यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या राज्य सरकार संसद में पारित किए गए किसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है?
मानसी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हुई हैं जहाँ संसद ने कोई कानून बनाया और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट में गईं। आम तौर से ये होता है कि किसी मैटर के इंटरप्रिटेशन में ये होता है डिस्प्यूट कि क्या ये चीज यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, और ऐसे तो सैकड़ों केसेस हैं। अब ये जो केरला का मामला है ये जरा सा यूनिक है, लेकिन ये कोई चौथी पांचवी बार है मेरे हिसाब से शायद। वो ये कह रहे हैं कि ये जो बनाया है लॉ संशोधन करके, ये भारत के संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है। मैं आपको ये बताऊं मानसी कि इससे पहले भी कई बार ऐसी बात हो चुकी है, दो जजमेंट मुझे अभी याद आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र के कानून को राज्य चुनौती दे सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 का मतलब ये है कि आप किसी भी मौलिक अधिकार की उल्लंघन पे सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं, लेकिन यहां जो राज्य ने अनुच्छेद जिसके तहत ये केस फाइल किया है वो अनुच्छेद 131 है। अच्छा, 131 अनुच्छेद में ये है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र के विरुद्ध जाती है किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जिसपे एग्जिस्टेंस या एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट जो है वो डिस्प्यूट में हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रश्न है ये लॉ में हल होगा, ये एक पॉलिटिकल प्रश्न है। देखिए, जो उनकी असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया उसकी कोई संवैधानिक हैसियत नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुआ कि भाई केंद्र में पार्लियामेंट में भी जनता के चुने हुए लोग हैं, केरला की असेंबली में भी जनता के चुने हुए लोग हैं। मैसेज ये देना चाहते हैं कि इस लॉ पे राष्ट्र एक मत नहीं है, और अगर इस तरह के रेजोल्यूशन 8-9 असेंबलीज ने पास किए तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये लगेगा कि भाई इस लॉ में देश में ओपिनियन जो है मत विभाजित है। तो ये एक पॉलिटिकल बैटल है, लीगल बैटल नहीं हो रही है। ये
विश्लेषण कर रहे थे कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा। आज एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से भी आ रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद 5 महीने के बाद 36 केंद्रीय मंत्री पूरे इलाके का दौरा करेंगे। वो 18 से 25 जनवरी के बीच लोगों से बात कर उन्हें इन प्रावधानों को हटाने के बाद वहां लागू हुई सरकारी योजना के लाभ के बारे में बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के नेता अभी भी नजरबंद हैं और कश्मीर में अभी भी इंटरनेट पर पाबंदियां लागू हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की ओर से वार्ताकार रह चुकी प्रोफेसर राधा कुमार से, और उनसे पूछा कि इन हालातों में इस दौरे का आखिर मतलब क्या होगा।
मैं समझती हूँ कि ये पूरी चीज एक बड़ी अजीब हरकत है। देखिए, पहले तो बिना पूछे आपने सब जो क्लॉजेज हैं आर्टिकल 370 के रद्द कर दिए, ये बिना लोगों से बात करना। अब आप जा रहे हैं उनको समझाने कि आपने क्या किया है 5.5 महीने बाद, और वो भी बिना पूछे। जैसे आपने कहा पॉलिटिकल जो है वो या तो डिटेंशन में है या इन्होंने वायदा दिया हुआ है कि ये इस चीज के खिलाफ नहीं बोलेंगे, और उसी वायदे पे इनको थोड़ी सी छूट मिली है, तो मुंह तो बंद कर ही दिया। अब इंटरनेट हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते में आप देख के जिस हद तक दे सके दें। अब सुप्रीम कोर्ट के उसके जवाब में इन्होंने एक और नोटिस निकाल दी और कही कि हम बैन रखेंगे, तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं। और अब कह रहे 36 लोग जाएंगे।
कंफ्यूजिंग स्थिति है कि ऐसा लग रहा है कि पहले बिना सोचे समझे एक फैसला थोप दिया गया और उसके बाद अब उसका जायजा लेने की शायद जरूरत आन पड़ी।
अगर वो अभी सोच रहे कि इसको अब वापस करें तो फिर भी मैं कहूंगी चलो कुछ होश तो आया, पर वो ये नहीं कह रहे। ये कह रहे हम समझाने जा रहे हैं। तो क्या समझाएंगे आप? क्या आप सचमुच में समझते हैं कि लोगों को नहीं मालूम कि 370 में क्या था? अच्छा, तीसरी बात, पहले तो आप कह रहे थे कि अरे शायद हम ये 35A का एक लिमिटेड रूप वापस लाएं आर्टिकल 371 में, एक और वो डाल के ये हिल स्टेट्स के लिए कि प्रॉपर्टी बाहर वाले बहुत कम खरीद पाए, जैसे हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, वगैरह में है। अब कह रहे हैं कि नहीं, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि नहीं तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। सबको मालूम है कि जिस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी है उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आएगी, तो ये तो फिर लैंड ग्रैब बन जाएगा कि लोग खरीद लेंगे जमीन और बैठेंगे।
जी, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इस मामले में सरकार एक कदम पीछे हटने जैसा इंडिकेशन दे रही है इस फैसले के साथ?
बिल्कुल नहीं। देखिए, पहले इन्होंने जाके पार्लियामेंट में जल्दबाजी से और बिना नोटिस दिए, बिना बिल टेबल करे, सब चीज 1-2 घंटे में, एक दिन में खत्म कर दिया, पास कर दिया। पर ये बातचीत थोड़ी करने जा रहे हैं, ये कहने जा रहे हैं कि आप हमको समझते नहीं हैं। सब समझते हैं, सबको मालूम है कि इन्होंने क्या किया है और क्यों किया है। इसमें कोई बेसमझ की बात है ही नहीं, ये तो पूरा सरसर झूठ है। और वही चीज वो कह रहे हैं कि लोगों को गलत फहमी है, उनको समझ नहीं आता।
जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे केंद्रीय मंत्री, विश्लेषण कर रही थी प्रोफेसर राधा कुमार। छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे संविधान विरोधी बताया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि पुलिस व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन NIA एक्ट में पुलिस की शक्तियां केंद्र को दी गई हैं, जो संघीय भावना के खिलाफ हैं। इधर राज्य में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार संघीय ढांचे पर प्रहार कर रही है। सुनिए रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में साल भर पहले सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी ने पहले तो राज्य में CBI को प्रतिबंधित किया, अब राज्य सरकार ने UPA सरकार के कार्यकाल में ही बनाए गए NIA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। असल में 2013 में संदिग्ध माओवादियों द्वारा बस्तर में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 28 लोगों की हत्या की जांच CBI ने करने से इनकार कर दिया था और आरोप है कि NIA ने इस मामले में आधी अधूरी जांच की। हालत ये हुई कि 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस ने जब इस मामले की SIT से जांच कराने के लिए NIA से दस्तावेज मांगे तो NIA ने इससे इनकार कर दिया। अब राज्य सरकार NIA कानून को ही चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य के महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा कहते हैं,
संविधान की List 2, Schedule 7 इसमें ये कहा गया है कि कोई भी पुलिसिंग का मामला राज्य सरकार के भीतर राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आएगा, परंतु NIA के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर पुलिसिंग के सिस्टम को NIA को सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो चूंकि हमारे क्षेत्राधिकार में ये अतिक्रमण हो रहा है इसलिए हमने इस एक्ट को चैलेंज किया है।
राज्य सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से NIA का दुरुपयोग कर रही है। जिन मामलों की राज्य सरकार खुद जांच कर रही है उसमें अनावश्यक रूप से केंद्र सरकार NIA की जांच करवा रही है। सतीश चंद्र वर्मा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में इस पर भी आपत्ति की गई है, लेकिन राज्य में विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार के इस फैसले पर हैरानी जता रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते हैं,
जैसे CBI का क्षेत्र है वैसे NIA का क्षेत्र है, ऐसे मामलों में जांच करती है जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और राज्य सरकार जिसको रिकमेंड करती है। NIA को रिकमेंड ना करे वहां तक ठीक है, मगर कोई सरकार सेंट्रल एजेंसी को जो सेंट्रल एक्ट से बनाए चुनौती दे सकता है, ये तो मुझे समझ के बाहर है।
NIA को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है यह तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन यह तय है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों की सीमा को फिर से परिभाषित करने वाला साबित होगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब वक्त है आपकी चिट्ठियों का,
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और आज मेरे साथ हैं सूर्यांशी पांडे भी।
नमस्कार
सूर्यांशी, मैं देख रहा हूँ कि ईमेल आपके पास हैं और मैं जो बंडल लेके आया हूँ उसमें हमारे उन श्रोताओं की चिट्ठियाँ हैं जो दूर दराज के इलाकों से, गांवों से हमें पोस्टकार्ड और चिट्ठियाँ लिखते हैं। तो आप एक ईमेल से शुरुआत कीजिए, उसके बाद मैं चिट्ठी पढ़ता हूँ।
ठीक है,
और चिट्ठियों का सिलसिला जो है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। इतने ज़्यादा लोग चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग ईमेल लिख रहे हैं, सबका जवाब देना भी मुश्किल है और सब चिट्ठियों को पढ़ पाना भी मुश्किल है। इसलिए जिन श्रोताओं की चिट्ठियां हम शामिल न कर पाएं उनसे मैं पहले से ही माफी मांगता हूं।
वैसे ही बहुत सारे खत मैं देख रही हूं आपके हाथ में हैं और ईमेल्स का भी यहां पे जखीरा जो है वो खड़ा हो चुका है। तो पहला ईमेल जो है वो कमल शर्मा का है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लिखते हैं। 23 वर्ष की उम्र है इनकी और कहते हैं कि मैं जूडो में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिबाधित खिलाड़ी हूँ और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की कप्तानी भी कर रहा हूँ और 2008 से निरंतर BBC को सुन रहे हैं। और इनका ये कहना है कि दिन भर और नमस्कार भारत जैसे कार्यक्रमों को बंद कर हम सबके वैश्विक परिदृश्य को जानने के एकमात्र संसाधन को आप हमेशा के लिए हमसे छीन रहे हैं।
और ये पोस्टकार्ड मेरे हाथ में है, लिखा है श्याम बहादुर सिंह ने, भिलाई दुर्ग से, छत्तीसगढ़ से। लिखते हैं कि 2 या 3 सेलों के माध्यम से सस्ते रेडियो से जुड़े रहने वाला सामान्य श्रोता जो रेगिस्तान, जंगल, अति वंचित क्षेत्र जहाँ न तो बिजली है न समाचार पत्र, वो भी विश्व से BBC के जरिए जुड़ा रहता था। ऐसे बहुत सारे श्रोता हैं जिनके पास न तो स्मार्टफोन है न वो इंटरनेट का भार वहन कर सकते हैं। वे BBC रेडियो ही सुनते आए थे, पता नहीं ये कैसे आप लोगों ने पता लगा लिया कि BBC के श्रोता कम हो गए हैं। श्रोता कम नहीं हुए हैं, लेकिन कुतर्क के आगे सच्चा तर्क नहीं चलता है। ऐसी बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हैं जिसमें हमारे श्रोता अफसोस भी जता रहे हैं, नाराज़ भी हैं, जैसे आपके पास ईमेल होगा पढ़िए तो।
जी हाँ, ये चंपारण बिहार से कुंदन कुमार रोशन लिखते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, ये साधु बाबा मिथिलेश झा जो एक मंदिर में रहते हैं उनकी तरफ से ये पत्र लिख रहे हैं। और ये कहते हैं कि मेरी उनसे 5 साल पहले से पहचान है, उनके पास एक रेडियो है और उस रेडियो को वह सिर्फ शाम को 7:30 बजे ऑन करते हैं जब भी BBC का बुलेटिन आता है। और वो ये कहते हैं कि इन बाबा के पास किसी भी तरह का साधन नहीं है खबर सुनने का, खबर जानने का, और कोई भी खबर को सबसे पहले BBC के द्वारा ही ये जैसे कहते हैं कि पुख्ता करते हैं कि वो सच है या नहीं।
दिनारा से जयराम खरवार का ये पोस्टकार्ड आया है, गांव हो, कस्बा हो या शहर हो या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी, यह BBC आकाशवाणी इन्होंने कह दिया है। ये मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है, तभी तो बिना सुने चैन नहीं आता है। मैं 1975 से BBC सुनता आ रहा हूँ, जब दिन में कभी 5 कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। और एक चिट्ठी और मैं लेता हूँ, पोस्टकार्ड ही है ये, काम देवड़ी कटोरिया बांका बिहार से लिखते हैं मैं 1961 से ही आपका श्रोता हूँ, मैंने अपने पिताजी से BBC सुनना सीखा और आज कल जो कार्यक्रम होता था उसको सुन करके मैं बड़ा हुआ हूँ। प्रातःकालीन सेवा जिस दिन बंद कर दी गई उस दिन मैं रो पड़ा।
और अपनी ऐसी कोई याद ताज़ा कर रहे हैं दरभंगा बिहार से ताबिश अहमद, जो ये कह रहे हैं कि वह 23 साल के हैं और मैंने BBC हिंदी को बचपन से जाना। जब मेरे पिताजी रात्रि थककर दुकान से आते तो रेडियो चलाते, उस वक्त मेरे गांव में बिजली भी नहीं होती थी और मैं आधी नींद में रहता था लेकिन रेडियो की आवाज़ सुनकर उठ जाता था।
देखिए सुरांशी, इतनी चिट्ठियां आई हैं कि सबको शामिल करना संभव नहीं है, इसलिए मैं कुछ नाम ले देता हूं ताकि उन श्रोताओं को लगे कि उनकी चिट्ठी हम तक पहुंच गई है। और ज्यादातर सब श्रोताओं ने यही लिखा है कि BBC प्रसारण बंद ना करें। जैसे दीपक मुरारी हैं लोहाघाट चंपावत उत्तराखंड से, कस्बा छजलैट जिला मुरादाबाद UP से लिखा है लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, इनका भी यही कहना है कि मैं 1970 से सुनता आ रहा हूं। और एक टाइप की हुई ये चिट्ठी हमारे पास आई है, इन्होंने बाकायदा हिंदी में टाइप करके भेजा है, इनका नाम है सोमनाथ दुबे, तिलई इंद्री मंडला मध्य प्रदेश से लिखते हैं, 2 पन्नों की चिट्ठी है, पूरी चिट्ठी पढ़ना संभव नहीं है, इनका भी यही कहना है कि BBC के कार्यक्रम बंद नहीं किए जाएं। और तमाम उन श्रोताओं से इस बार माफ़ी भी मांगते हैं कि आपकी चिट्ठियां हम शामिल नहीं कर पाए, नाम कुछ बहरहाल हमने लिए हैं लेकिन अपनी राय हम तक लगातार भेजते रहिए। BBC हिंदी सेवा, पोस्टबॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
और अब वक्त है खास पेशकश का। BBC के खजाने से आज हम आपको सुना रहे हैं भारत में बच्चों की स्थिति बयान करती श्रृंखला आकांक्षा की कुछ झलकियां। 13 एपिसोड की इस सीरीज का प्रसारण 1999 में शुरू हुआ था और इसके प्रस्तुतकर्ता थे अरुण अस्थाना।
आकांक्षा।
नमस्कार, भारत के बच्चों पर केंद्रित इस विशेष श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं मैं अरुण अस्थाना।
स्कूल 12 बजे जाते हैं, 4 बजे आते हैं, फिर सर से पढ़ते हैं ट्यूशन।
स्कूल का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है।
उसके पास भी वही राइट्स हैं जो मेरे पास हैं।
कपड़े धोते हैं, बच्चे को संभालती हूँ, सामान करती हूँ, ढोलिया करती हूँ।
भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों से मुलाकात करने के बाद, उनकी स्थितियां देखने के बाद ये स्पष्ट दिखता है कि भारत की भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति चाहे जितनी विविध हो, बच्चों की स्थिति कमोबेश एक सी ही है हर जगह। अगर कोई विभाजक रेखा है तो बस संपन्नता और विपन्नता तथा गाँव और शहर की। भारत में हर वर्ष करीब 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 2/3 से ज्यादा को शहरों का कंक्रीट नहीं, गांव की मिट्टी मिलती है घुटनों चलने के लिए और इन बच्चों की आंखों से सपने गायब हो रहे हैं। भूख, गरीबी और बीमारी इनका बचपन छीन रही है, बचपन में ही बुजुर्ग हो रहे हैं ये।
लड़के होते तो ज्यादा ही ठीक रहता ताकि हम अपने पैर पे खड़े रहते तो दूसरे की बात नहीं सुनना पड़ता।
पहले काम नहीं करते थे, यहाँ छोटा बड़ा
पढ़ते थे, फिर उसके बाद बड़े काम करने लगे, फिर काम करने लगे थे, फिर अली अब्बे पढ़ने लगे, फिर काम करा।
घर में जब पैसे नहीं रहेंगे तो भी कहाँ से करेंगे?
किस्मत जो बना देगी कुछ भी बन जाए।
अपने भाई के साथ शरबत बेचते हैं, उनका हाथ तो चल नहीं पाता, हम ही सब करते हैं। स्कूल जाते हैं, अब नहीं जाते, जाने की कोशिश अब भी करते हैं, मगर थोड़ा बहुत चले जाते फिर आ जाते हैं।
लेकिन शहरों का हाल भी कुछ अलग नहीं, दिशा देने वाला वहाँ भी कोई नहीं। शहरी मध्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा के नाम पर जो मिल रहा है उससे मोह भंग हो रहा है उनका। क्यों? 14 साल की मेनका बताती हैं।
कुछ टीचर ऐसे भी हैं कि बैठे रहते हैं, बुक निकालो, खुद पढ़ो, खुद बता देंगे, खुद ही ढूंढो, खुद ही करो।
बुनियाद ऐसी हो तो भविष्य क्या होगा, ये समझा जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता या शिक्षा का उपलब्ध होना अकेली समस्या नहीं बच्चों के विकास के लिए। शिक्षा का बोझ और माँ बाप की महत्वाकांक्षा भी, जिसे वो बच्चों पर लाद देते हैं, बच्चों से बचपन छीन रही है। शहरी मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के लिए ये समस्या ज्यादा ही गंभीर है। लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ने वाली 15 वर्षीय दिव्यता की दिनचर्या पर ध्यान दीजिए जरा, जो सुबह 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल में रहती है।
कोचिंग जाती हूँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, तो 3 बजे से कोचिंग, 7 o'clock तक वापस। अदरवाइज इफ इट इज ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे तब 5 बजे से 7 बजे तक। टेलीफोन पे बात करती हूँ, टीवी देखती हूँ, आई सर्व द नेट और पढ़ती हूँ।
माँ की इच्छाओं के विपरीत तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों और आंदोलनों के बावजूद बालिकाओं के प्रति भेदभाव अब भी कहीं भी देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की मीरा चाहकर भी अपनी लड़कियों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती, जबकि उनका लड़का क्षेत्र के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता है। क्यों?
अब सबका नहीं पढ़ा, लड़का ससुर पढ़ावा था, लड़कियों के हम पढ़ाई थी। तब के आदमी कहें पुराने जवान कौन, हमारे इतना पैसा नहीं, 18 लड़कियां सबका पढ़ाई, जहां स्थिति रही तहां पढ़ावा था।
पढ़ाई लिखाई खान पान से बढ़कर ये भेदभाव हत्या तक भी पहुंच जाता है, कभी भ्रूण हत्या के रूप में, कभी नवजात हत्या के रूप में। बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश जैसे राज्य में आज भी ये चलन आम है।
और अब चलते चलते सुनते हैं खेल की खबरें।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपने सालाना कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम शामिल नहीं है। ऐसे में उनके करियर पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसे धोनी के अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत माना जाए, इसके बारे में बात कर रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अयाज मेमन।
देखिए, मेरे ख्याल से इसमें दो पहलू है। एक तो ये है कि एक शायद सिग्नल है बीसीसीआई की तरफ से धोनी के लिए कि भाई अब हम आपके आगे देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको करना है वो करें, लेकिन आप हमारे स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। दूसरा पहलू ये है कि शायद धोनी और बीसीसीआई में कुछ बातचीत हुई है, और क्योंकि वो वर्ल्ड कप के बाद 2019 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था तब से अब तक मैदान पे उतरे नहीं है, कोई भी मैच नहीं खेला है। तो अगर आप खेलते हैं, जैसे आईपीएल वो खेलने वाले हैं, उसके बाद अगर वो दिखाते हैं कि T20 खेलना चाहते हैं वर्ल्ड कप में और फिर इंटरनेशनल मैचेस की तरफ आते हैं, तो शायद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में लेके आना बहुत ही कठिन था।
बीसीसीआई का सालाना अनुबंध अक्टूबर 2019 से सितंबर 2020 तक जारी रहेगा। इस लिस्ट में ग्रेड A+ में 3 खिलाड़ी शामिल हैं जिन्हें सालाना 7 करोड़ रुपए मिलेंगे। कप्तान विराट कोहली, उपकप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ग्रेड A+ में बने हुए हैं। वहीं आर अश्विन, रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार समेत 11 खिलाड़ी ग्रेड ए में रखे गए हैं।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की मांग की है, लेकिन राज्य के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान ने इस पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय मंत्रियों का एक दल शनिवार से जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है, जहां वे संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के बाद के प्रभाव के बारे में लोगों से बात करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर से पहले की तुलना में उनका देश अब अधिक यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दाश समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।